सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
छठे अध्याय में पहले दो श्लोक जो हैं वो भक्ति योग की प्रशंसा है, कर्म योग की प्रशंसा है। आर यू हियर? आर यू ऑल अटेंटिव? पहले दो श्लोक हैं वो कर्म योग की प्रशंसा है। तो कर्म योग जो है दूसरे चैप्टर से भगवान चले आ रहे हैं कर्म योग, तीसरे चौथे पांचवें छठे में यहां पर आके प्रशंसा करके अब वो जो है आगे चलते हैं। तब किसी का प्रश्न होगा कि हमको जो है कब छूटेगा ये कर्म योग, एक प्रश्न आता है ना, कितने दिन तक ड्यूटी चलती रहेगी, कर्तव्य कर्म करो 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 सब बोलते रहते हैं। तो भगवान बताते हैं आर रुक्षो मुनि योगम कर्म कारण उच्यते। आर रुक्ष, तो आर रुक्षो क्या होता है, आरोढ़ुम इच्छत, आरोढ़ुम चढ़ना चाहता है, चढ़ना चाहता है मतलब ध्यान योग में चढ़ना चाहता है। इसको अगर सही तरीके से समझना है तो एक सिंपल एग्जाम्पल लो, किसी को घोड़े पर चढ़ना है तो घोड़े की चढ़ने की जो इच्छा है और जब तक हम उसको घोड़े पर चढ़ नहीं जाते हैं तब तक उसको हम आरुरुच्छु कहेंगे हैं, घोड़े पर चढ़ना। और जब चढ़ के बैठ गया तो वो योगारूढ़ हो गया, आरूढ़ हो गया, बैठ गया घोड़े के ऊपर आरूढ़ हो गया। आरूढ़ का मतलब चढ़ना होता है, है? आरूढ़ का मतलब। तो आरुरुच्छ आरूढ़ की चेष्टा है ध्यान योग में, जिसमें चढ़ने की इच्छा है उसके लिए भगवान क्या कहते हैं, कर्म योग कारण मुच्यते। अगर उसके अंदर आपको सक्सेसफुल होना है, सफलता प्राप्त करनी है, किसमें, ध्यान में, ध्यान में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले आपको क्या करना होगा, कर्म योग करना होगा। देखो हम लोगों ने बहुत बार इसको कहा है, अब भगवान भी कहते हैं पहले क्या करना होगा, कर्म योग करना होगा। दूसरी कोई दवाई है भगवान ने नहीं बताई, तो कर्म योग पहले करना है। और योगारूढ़स्य तस्यैव समं कारणम् उच्यते, जो योगारूढ़ हो गया ध्यान में स्थित हो गया उसके बाद में क्या कर्मयोग करना है, नहीं, समा, समा मतलब जो है उससे अब छूट जाना है, अब नहीं करना होगा। आप ध्यान में अगर स्थित हो गए उसके बाद में फिर कर्मयोग नहीं करना है आपको, आपकी मर्जी है, उसके बाद में कर्मयोग करो नहीं करो आपकी इच्छा है। बहुत बढ़िया। उसके बाद भगवान कहते हैं कब आदमी योगारू हो गया, यह भी बताओ हमको, हमको पता लगना चाहिए ना कि हम योगारू हो गए। तो भगवान कहते हैं यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। हम योगारू उसको कब कहेंगे, तीन चीजें यहां कही, ये तीन चीजें क्या क्या है, न इंद्रियार्थ से अनुसज्जते, जो इंद्रियों के अर्थ, इंद्रियों का अर्थ का मतलब सेंस ऑब्जेक्ट्स, विषयों, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच विषय हैं, जो विषयों में आसक्त नहीं होता। दूसरा कर्म सुना अनुसज्जते, जो कर्म के अंदर में आसक्त नहीं होता। तीसरा सर्व संकल्प सन्यासी, जिसका कोई संकल्प नहीं है, अब उसके अंदर कर्म की कोई इच्छा नहीं है, अभाव है उसके अंदर, मेरे को कर्म नहीं करना है, हो गया मेरा। योगारूढ़ तदा उच्यते, तब आपने आपको समझो कि योगारूढ़ हो गए। हमने तीन चीजें बताई थी, एक विषयाशक्ति बताई थी, एक कर्माशक्ति बताई थी, एक कर्तृत्वाशक्ति बताई थी, चौथा क्या था, कर्मफल आसक्ति, वो पहले ही आ गया, पहले श्लोक में आ गया था, अनाश्रित कर्मफलम कर्माफल आसक्ति। तो ये चार आसक्तियां जब छूट जाएंगी तब आप अपने आप को योगारूढ़ समझ सकते हो। उसके बाद भगवान कहते हैं कि हमको अपने आप को, जब मनुष्य इस प्रकार योगारूढ़ हो जाता है तब अनर्थों का समूह, सब अनर्थों का समूह क्या है, इस संसार समुद्र से स्वयं अपना उद्धार कर लेता है। जब योगारूढ़ हो जाता है, योगारूढ़ हो जाता है मतलब ध्यान में स्थित हो जाता है, ध्यान में स्थित हो जाता है मतलब उसने अपनी आत्मा को अनुभव में ले लिया, जिसको हम रियलाइज लोग कहते हैं, रियलाइज जिसको कहते हैं, जब एक बार रियलाइजेशन हो जाएगा तो उससे क्या हुआ, आप संसार सागर से निकल गए, खत्म हो गया आपका, खत्म, संसार सागर से निकलने का मतलब क्या हुआ, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति। दुख कौन देता है आपको, दुख हमको आत्मा देती है, दुख अनात्मा देता है। सुख कहां से आता है, सारे सुख का सोर्स क्या है, आत्मा है। तो ध्यान में स्थित होने का मतलब क्या हुआ कि आप आत्मा के साथ में और अनात्मा से हम छूट गए, सब विषयाशक्ति कर्माशक्ति कर्तृत्वाशक्ति कर्मफलाशक्ति सब छोड़ दिया, मतलब अनात्मा को छोड़ दिया। देखो कितना सिंपल साइंस है, इसको छोड़ोगे तो उसके साथ में जुड़ोगे, एक को छोड़ोगे तब दूसरे से जुड़ोगे, तब आपको परमानंद प्राप्ति होती है। अच्छा फिर कहते हैं उद्धृत उद्धृत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, तो अपने आप को खुद उठाओ, अपने मन को आप खुद उठाओ, अपने आप चेष्टा करो। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग सब जो हैं संसार सागर में डूबे हुए हैं, अभी बाहर तो निकले नहीं, कैसे समझे संसार सागर में डूबे हुए हैं, कैसे प्रूफ करोगे, क्योंकि अगर हम ध्यान में स्थित हो जाते, ज्ञानी होते, तो हमारा दूसरा जीवन पुनर्जन्म नहीं होता। हमारा जन्म हुआ है, अगर हमारा जन्म हुआ तो हम पिछले जन्म के अंदर ज्ञानी हो गए, ज्ञानी नहीं हुए पिछले जन्म। तो जिसका जन्म हुआ है तो जन्म के टाइम में हम अज्ञानी थे, मगर इस जन्म के अंदर ज्ञानी हो सकते हैं, जिससे हमका दूसरे जन्म के अंदर और फिर बर्थ नहीं होगा, दूसरा जन्म ही नहीं होगा हमारा। तो संसार सागर में हम सब डूबे हुए हैं, तो इसमें से अगर उठना है तो अपने आप उठना होगा। आप बोलोगे कि हमारा स्पाउज हमको हेल्प करेगा, हमारा वेल्थ हमको हेल्प करेगा, कुछ नहीं होने वाला है, अपने आप करना होगा, ये अकेले की यात्रा है, समझे, एकदम समझ के रख लो, अकेले की यात्रा है। न आत्मानम अवसादे, बोले ये जन्म पाने के बाद में फिर अपने आप को और उसके अंदर ज्यादा मत डुबा दो। जिन लोगों ने कर्म योग नहीं किया है और जो नहीं कर रहे हैं वो अपने आप को और डुबा रहे हैं, ये मालूम है आपको, कैसे आप प्रूव करोगे कि अपने आप को डुबा रहे हैं, क्योंकि वो कर्म योग नहीं करके साकाम कर्म कर रहे हैं, साकाम कर्म कर रहे हैं इसलिए लाइक्स डिसलाइक्स बढ़ रही हैं, राग द्वेष बढ़ रहे हैं, राग द्वेष बढ़ रहे हैं मतलब वासना बढ़ रही है, वासना अगर बढ़ रही है तो आप संसार में और डूबते जा रहे हैं। आपको मनुष्य जीवन इसलिए मिला था कि आपके पास जो पूंजी है वासना की, उसको आप कमती कीजिए। कैसे कमती होगी? थैंक यू वेरी मच। कर्मयोग से कमती होगी। अब जान के भी अगर आप कर्मयोग नहीं करते हो तो फिर वासना आपकी बढ़ेगी या कमेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी मतलब क्या हुआ? अब संसार सागर में और डूबते जा रहे हो। तो भगवान कहते हैं अपने आप को और मत डूबो इसके अंदर में है। आत्मना ही आत्मनो बंधु आत्मा रही रिपु आत्मना, ये आपका आत्मना, आपका मन जो है वो ही आपका बंधु है। और जो मन आपका, मन ही आपका शत्रु है। कौन सा मन आपका बंधु है, कौन सा मन आपका शत्रु है? जिस मन को आपने जीत लिया है, जिस मन को आपने कंट्रोल कर लिया है, नियमित कर लिया है, वो मन आपका फ्रेंड है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द पीपुल आर स्लेव ऑफ माइंड। सब लोग जो है मन के हिसाब से चलते, मेरा मन कह रहा है मैं कर दिया और क्या। तो भगवान कहते हैं अपने मन को आप शुद्ध करो, अपने मन से अपने आप को उठाओ, क्योंकि यह आप ही अपना बंधु है, आपका मन ही बंधु है। दूसरा कोई ऐसा बंधु नहीं है जो संसार से मुक्त कराने वाला हो। शंकराचार्य जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आपका मन छोड़ के दूसरा कोई ऐसा बंधु नहीं है इस संसार में जो आपको मुक्ति दिला दे। मुक्ति अगर आपको पानी है तो आपको मन शुद्ध करना होगा, मन को नियंत्रण करना होगा। दूसरा कोई आदमी आपका मन शुद्ध नहीं कर सकता। आपके बिहाफ में हम कर्मयोग आपके बिहाफ में हम कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो दूसरे के करने से कुछ नहीं होता। प्रेमादि भाव बंधन के स्थान होने के कारण सांसारिक बंधु भी मोक्ष मार्ग के विरोधी होते हैं। अब जब हम प्रेम मार्ग के अंदर, जिसके सामने हमारा, हम बड़ा प्रेम है, स्त्री पुरुष का प्रेम है, माता पिता से हमारा प्रेम है, हमारे पुत्र पुत्रियों के साथ हमारा जो प्रेम है, तो बोले ये तो बंधन है, ये बंधन आपको कैसे मुक्त करेगा? इस बंधन के जितने भी आदमी हैं ये तो आपको विचलित करेंगे और ना, ये आपको नहीं हेल्प कर सकते। फिर भगवान कहते हैं कि छठे श्लोक में कहते हैं, बंधु आत्मा आत्मान तस्य ये नैव आत्मना जितः। कौन सा बंधु है आपका आत्मा? आत्मा माने मन, आत्मा माने मन। यहां पर कौन सा मन आपका बंधु है? तो कहते हैं जिसको आपने जीत लिया है, जिसको आपने कंट्रोल कर लिया है, जिसको आपने नियमन कर लिया है, जो मन आपकी बात सुनता है, जिस मन के आप मास्टर हो, ऐसा मन, ऐसा मन अगर आपके पास में है तो वो आपका बंधु है। और उसके बाद अनात्मना तू शत्रुत्व वर्तेत आत्म ही शत्रुवत। और अनात्मनस्तु, अनात्मनस्तु मतलब जिसको पर, जिस मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जिस मन पर कंट्रोल नहीं है वो तो शत्रु है। देखो मन जो है, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक गाड़ी की तरह है। गाड़ी अगर आपके नियंत्रण में है तब तो आपको ठीक जगह ले जाएगी। अगर गाड़ी आपके नियंत्रण में नहीं है तो क्या होगा आपको मालूम है? वो गाड़ी आपकी शत्रु है। उसी तरह से मन भी जो है अगर आपके कंट्रोल में है तो वो आपका मित्र है, अन्यथा शत्रु है। अच्छा, कैसे फिर मन को समाहित हो, या किसका मन समाहित होता है? अब भगवान ये बताने जा रहे हैं सातवें श्लोक में। बहुत सिस्टमेटिक वे से भगवान जो है इस विज्ञान को ओपन कर रहे हैं, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर दे दे के भगवान आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रश्न आता है कैसे मन को हम समाहित करें, या कौन सा मन समाहित होने योग्य है? तो भगवान कहते हैं
जीतात्मन प्रशांतस्य
जीतात्मन प्रशांतस्य
परमात्मा समाहितः
परमात्मा समाहितः
शीतोष्ण सुख दुःखेषु
शीतोष्ण सुख दुःखेषु
तथा मानापमानयोः
तथा मानापमानयोः
जीतात्मन प्रशांतस्य
परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु
तथा
हम लोग दूसरी लाइन को पहले लेंगे शीत उष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान यो तीन द्वंद यहां बताए हैं भगवान ने और ये तीनों जो है हमारे जीवन का अनुभव है शीत उष्ण आपको अनुभव होता है अब अम्मा तो शीत में आई हैं उष्ण जगह से आई हैं शीत में आई हैं उनका अनुभव पूछो शीतोष्ण मालूम है उनको सुख दुख होता रहता है हमें और मान अपमान हमको अनुभव में आता है तो शीत उष्ण जो है वो शरीर के लेवल पर है और मान अपमान बुद्धि के लेवल पर है सुख दुख माइंड के लेवल पर वेरी गुड तो हमारे पास तीन ही तो इक्विपमेंट है बीएमआई तीन ही इक्विपमेंट है बीएमआई तो शरीर के स्तर पर हमको शीत उष्ण का पता लगता है मन के स्तर पर सुख दुख और बुद्धि के स्तर पर मान और अपमान तो ये सारे के सारे जो है सप्तमी विभक्ति के अंदर हैं सप्तमी विभक्ति का मतलब है इन सब में सप्तमी विभक्ति का मतलब होता है इन सब में क्या है वो निर्विकार रहता है वो सम रहता है उसका मन कभी विक्षिप्त नहीं होता सर्दी है तो क्या करें कपड़े पहन लो ठीक है गर्मी है चार लेयर नहीं पहनो एक लेयर पहन लो यही तो हम करते रहते हैं विक्षिप्त नहीं सुख दुख के अंदर कोई विकार नहीं मान अपमान कोई विकार नहीं सचमुच मन शांत रहना चाहिए ऐसा कोई एजिटेशन नहीं आना चाहिए ऐसा जब होगा तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे जित आत्मनः उसने अपने मन को जीत लिया देखो जित आत्मनः आत्मनः वर्ण यहां मन है आत्मनः का मतलब मन जब तक आपको कोई ये न बता दे कि यहां पर इस वर्ड का मतलब ये है हमारे गीता और उपनिषद सारे मिस्टिक लैंग्वेज हैं आप खुद पढ़ने चाहोगे डिक्शनरी लेके किसी डिक्शनरी में मिलेगा नहीं आत्मनाम का मतलब मन होता है या आत्मन का मतलब शरीर होता है तो जित आत्मना है उसने अपने मन को जीत लिया अच्छा कैसे जीत लिया भाई एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं एक परवाइल्ला स्वामी थे आपने कभी सुना नाम इन स्वामी का सुना परवाइल्ला स्वामी तमिल कहने यू आर राइट सो परवाइल्ला का मतलब होता है डोंट केयर डोंट मेरे को पता नहीं मैं ठीक से प्रोनाउंस कर पा रहा हूं कि नहीं पा रहा हूं ऐसे एक स्वामी थे डोंट केयर उन्हें अपने मन को जीत लिया है तो एक गांव के बाहर में थे लोग जो है गांव वाले सब आते थे श्रद्धा से उनको भोजन वोजन सब देते थे उनके लिए कुटिया उटिया बना दी सब कुछ व्यवस्था व्यवस्था कर दी तो वहां का गांव का जो मुखिया था या उसको जमींदार कहो या सबसे धनी व्यक्ति करो तो उसकी एक लड़की थी जवान लड़की और उसका एक मैनेजर भी था अब कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गया वो गर्भवती हो गई लड़की शादी हुई नहीं है अब फिर जो है उसके माँ बाप ने उनको जोर दिया कि तुम्हारे गर्भ का जो है उसका पिता कौन है बच्चे का बताओ अब जो उसका लवर जो था अब वो लोगों ने खुसुर पुसुर करके कहा मेरा नाम मत लेना नहीं तो हमको तो नौकरी से निकाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, किसका नाम लिया जाए? स्वामी जी सब उसके यहां पहुंच गए, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, उन्होंने कहा परवाही ला डोंट केयर, सब गांव वाले ने भोजन वोजन सब बंद कर दिया, कोई नहीं आता आप परवाही ला भाव पाने, कोई भी चेप नहीं मन में। अब बच्चे की डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के बाद में तो अब अपने उसके पिता के घर में उसको जाना होगा ना, बच्चे के पिता के घर में। अब वो लड़की सोचने लगी अब क्या करें, ये तो उसका फादर नहीं है, उसको भी पता है, मगर लड़की के माँ बाप कहते हैं कि अपने घर जाओ, जो इसका पिता है उसका वो ही विल टेक केयर। उसके पास में लेके बच्चे को लेके वो लड़की आ गई और स्वामी बोलता है पर भाई ला डोंट केयर, ठीक है आ जाओ। तो कुछ दिन के बाद में फिर उनको अकल है कि यहां पर ये तो गड़बड़ हो गया है, ये तो कुछ ना कुछ बोलना होगा, नहीं तो ये फिर यहां पर हम रह के कैसे ये होगा, बच्चे की परवरिश तो हो नहीं सकती यहां पर। फिर उसने बताया कि भाई असली आदमी कौन है इसके पीछे, जब पता लगा कि ये है फिर उसके बाद शादी वादी हुई, इसको छोड़ दिया, फिर जो है स्वामी जी के पास में लोग आना शुरू कर दिए, फिर स्वामी जी फिर परवाही ला रोज गया, ठीक है। तो कभी आपने मान किया हमारा, बीच में अपमान किया, उसके बाद में फिर मान शुरू कर दिया, मगर स्वामी जी इसलिए उसको हम कहेंगे जित आत्मना, उसने जीत लिया। अच्छा फिर प्रशांतस्य परमात्मा समाहित है, प्रशांत क्या है, हर परिस्थिति में उसका मन शांत है, हर परिस्थिति में जो आ जाए ठीक है हमको क्या है, शांत है। यह मन का वशीकरण है, इसको कॉन्करिंग ऑफ माइंड कहते हैं, जो परिस्थिति आ जाए भगवान ने दिया ठीक है वो समझेंगे, मन हमारा शांत है प्रशांत। समाहित, समाहित मतलब सम्यक आहित, पूरी तरह से परमात्मा में है और वह परमात्मा मैं हूं, यहां तक पहुंचना है। परमात्मा तो हम सबके साथ है, कोई ऐसा आदमी नहीं कह सकता कि मेरे साथ में आत्मा नहीं है, परमात्मा मेरे साथ नहीं है, ऐसा नहीं है, परमात्मा सबके पास में है, हर जीव के पास में है, मगर वह परमात्मा मैं हूं यहां तक आपको जो स्थिति लानी है, परमात्मा मेरे से भिन्न नहीं है ये स्थिति में हमको पहुंचना है। तो परमात्मा सदा हमें उपलब्ध है, तो ऐसे जीतात्मन प्रशांत का मन परमात्मा में समाहित होता है, उसने ध्यान में सफलता प्राप्त कर ली, ध्यान उसका कंप्लीट हो गया, ऐसा व्यक्ति योगारूढ़ कहलाता है, जिसके पास में जो हर स्थिति में सम रहता है तीन द्वंद्वों के अंदर में। तीन द्वंद्व कौन से हुए? द्वंद्व पेयर ऑफ अपोजिट, शीतोष्ण सुख दुख मान अपमान, जो सम रहता है ऐसा व्यक्ति जित आत्मन कहलाता है, उसका मन बराबर शांत रहता है, प्रशांत हो गया, उसका मन समाहित होगा। देखो वर्ड जो है एक के बाद एक कितने सुंदर तरीके से प्लेस किए, एक एक वर्ड की जो इतनी अच्छी उसके अंदर खासियत है, खूबसूरती है, अगर आप समझें उसको कैसे वो साइंटिफिकली एक एक करके आगे बढ़ रहा है तो आपको बड़ा आनंद आता है। तो इंपॉर्टेंट थिंग इस वर्ष में क्या है, जिसने मन को वशीकृत या जीत दिया है वही रोगारूढ़ हो सकता है। तो मन को जीत लेना, मन को जीत लेना मतलब आप अगर कर्म योग करते आ रहे हो, वासना जब आपकी कम हो जाएगी तो आस्ते आस्ते वो मन वशीकरण में आता जाएगा, जितनी जितनी वासना कमती होती जाएगी उतने उतना आप शांत होते जाओगे, जितनी वासना ज़्यादा रहेगी उतना मन एजिटेटेड रहेगा, एक के बाद एक वासना आपको परेशान करती रहेगी। सिंपल साइंस है, और ऐसी वासना का क्षय केवल साकाम कर्म से होता है। हम जो है शंकराचार्य जी की तरह भज गोविंदम की तरह आपके सिर पर हैमर करते रहेंगे बार बार जब तक आप शुरू ना कर दो। शुरू तो करना होगा, चाहे अभी करो चाहे बाद में करो, जब मर्जी करो करना होगा, दूसरा उपाय हमारे पास में नहीं है। तो जिसने समाधि में सफलता पाई है ऐसे योगारूढ़ के लक्षण क्या हैं? ऐसे योगारूढ़ के लक्षण भगवान बताने जा रहे हैं। अच्छा, यहां पर ये लक्षण दो किस्म के आदमियों को घटते हैं। योगारूढ़ दो किस्म के होते हैं, एक तो जो घोड़े पर चढ़ गया एकदम, एक तो वो योगारूढ़ हो गया, ध्यान में स्थित हो गया, और दूसरा जो है जो बहुत एडवांस सीकर है। बहुत एडवांस सीकर मतलब ध्यान की प्रैक्टिस कर रहा है, कर्मयोग का मार्ग सफलता से कंप्लीट कर चुका है, वो हो गया एडवांस सीकर। एडवांस सीकर, तो ये दोनों के लक्षण एक हैं। एक हुआ जो योगारूढ़ हो गया, दूसरा है जो एडवांस सीकर है। भाई एडवांस सीकर क्या हुआ? एडवांस सीकर वो है जिसने कर्मयोग काफी कर लिया है, अब खूब जल्दी ही वो योगारूढ़ हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों का लक्षण अब भगवान बताते हैं।
ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा,
ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा,
कूटस्थो विजितेन्द्रियः,
कूटस्थो विजितेन्द्रियः,
युक्त इत्युच्यते योगी,
युक्त इत्युच्यते योगी,
समलोष्टाश्म काञ्चनः,
समलोष्टाश्म काञ्चनः,
ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कूटस्थो विजितेन्द्रियः, युक्त इत्युच्यते योगी, समलोष्टाश्म काञ्चनः,
ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कूटस्थो विजितेन्द्रियः। तो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, यहां फिर आत्मा आया, तृप्त आत्मा, तृप्त आत्मा माने मन, यहां आत्मा का माने मन, जिसका मन ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो गया। अच्छा, ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान मतलब आत्मज्ञान, जिसने आत्मज्ञान गुरु से श्रवण किया। अच्छा, आत्मज्ञान के बारे में गुरु से जिसने श्रवण किया। अच्छा, आत्मज्ञान खुद पढ़ लिया, होगा काम? गीता हम खुद पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, एक चैप्टर रोज, सारा जीवन पढ़ते रह जाओ कुछ नहीं होगा। क्योंकि श्रवण काल में ही अविद्या का नाश होता है, अविद्या का नाश जो है श्रवण काल में होता है, और किसी काल में नहीं होगा। आत्मा के बारे में जानने का, अभी जो हमारे पास क्या अवस्था है हमारी, हम आत्मा को नहीं जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते हैं मतलब हमारे में अविद्या है, इग्नोरेंस है। ये इग्नोरेंस कैसे जाएगा? श्रवण काल में जाएगा। किससे श्रवण करना होगा? गुरु से श्रवण करना होगा आत्मा के बारे में, तब जो है वो श्रवण काल में आपका अज्ञान चला जाएगा। किसके बारे में अज्ञान चला जाएगा? आत्मा के बारे में अज्ञान चला जाएगा। अच्छा, तो अज्ञान को हटाना है तो आपके पास क्या उपाय है? एकमात्र उपाय है श्रवण, गुरु के पास आपको श्रवण करना है। नंबर दो, अब उसके बाद में आपको थोड़ा सा मान लीजिए संशय हो गया, डाउट हो जाता है, सुना ठीक से समझ में नहीं आया, प्रश्न कर देते हैं हम, अर्जुन ने भी बहुत प्रश्न किए, या आप जो है मनन करो उसके ऊपर में, घर में जाके फिर से उसको चिंतन करो, तो मनन करने से डाउट निकल जाते हैं, डाउट सब चले जाएंगे। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है? ध्यान में बैठना है, निधि ध्यासन करना है, तो निधि ध्यासन के अंदर विपरीत भावना का नाश होता है। तो आत्मज्ञान होने के बाद भी विपरीत भावना रह जाती है, जीवो हम देहो हम कर्ता हम। ये विपरीत भावना है। आत्मज्ञान क्या है? तत्त्वमसि आप, हम सब ब्रह्मन है, ये आत्मज्ञान है। मगर कभी कभी डाउट होता है, पता नहीं हम ब्रह्मन है तो फिर सफर क्यों कर रहे हैं। मनन करना होगा, निधि ध्यासन करना होगा, तब जो है वो आपका विपरीत भावना से भी आप छूट जाओगे। मगर एक बार आप सिद्ध हो गए, मतलब ध्यान में सक्सेसफुल हो गए, उसके बाद में फिर क्या आपको सर्वण मनन निधि ध्यासन करना है? आपको जो जानना था आपने जान लिया, जो पाना था आपने पा लिया, उसके पाने के बाद में फिर आप करोगे, फिर श्रवण शुरू कब से करें, ABCD पढ़े और नहीं पढ़ना है, उसके लिए फिर और कुछ दरकार नहीं है। कूटस्थ, कूट मतलब क्या होता है? एनविल, निहाई होती है ना, आपने कभी लोहार को देखा है? यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आता है। आप इंडिया में चले जाओ तो लोहार लोग आपको रास्ते पर भी दिखाई पड़ेंगे, छोटी सी दुकान है, एक होंकनी लगाई है, उसमें से हवा देते हैं, फिर लोहे को गर्म किया, उसको सेप देना है, पर निहाई पर रख के उसको पीटते हैं। तो जितना आप पीटो मगर निहाई के ऊपर कुछ नहीं होता है, जो एनविल है उसको कुछ नहीं होता है, उसमें कोई विकार नहीं होता है, विकार नहीं होता है। तो ये कैसा है? बोले वो आदमी जो है कूटस्थ की तरह हो जाता है। कूटस्थ की तरह हो गया मतलब अब विषय आने पर उसको कोई असुविधा नहीं होती है। हम विषय को देख के विचलित हो जाते हैं ना, हमारे मन की पसंद की चीज आ जाए, तो हम विचलित हो जाते हैं। मगर ये ज्ञानी आदमी कूटस्थ है, कुछ नहीं होता है उसको, कभी विचलित नहीं होता है वो। क्यों नहीं विचलित होता है? योग रतोवा भोग रतोवा, चाहे वो योग में हो भोग में रहे, मगर उसका मन बराबर वहां है, भगवान के पास है, ये विचलित नहीं है वो। अच्छा, एक बार सुखदेव जी को जो है उनके पिता ने, वेदव्यास ने कह दिया कि भाई तुम जो है सिद्ध हो गए हो, सिद्ध हो गया, तुमको जो आत्मज्ञान देना था वो दे दिया, वो पा लिया। मगर लड़के को विश्वास नहीं हुआ, सुखदेव को विश्वास नहीं हुआ, तो उसने फिर बोला कि मेरे को विश्वास नहीं होता है पिताजी। तो बोले जाओ तुम फिर एक और सिद्ध आदमी है, जनक राजा के पास चले जाओ तुम। अब जनक राजा के पास गया कि पिताजी ने, वेदव्यास जी ने भेजा है, मेरे को कह दिया आप सिद्ध हो गए हो, मुक्त हो गए हो, तुम्हारा जम नहीं होगा। मेरे को नहीं समझ आता है कि सब क्या है। बोला अच्छा ठीक है, मेरे को परीक्षा करके बताओ मेरा हुआ कि नहीं हुआ है। बोले ठीक है, एक काम करो, अपनी जीभ जो है बाहर करो, जीभ के ऊपर एक कण चीनी का रख दिया, शुगर ग्रेन, एक ग्रेन, वन ग्रेन रख के बोला तुम जो है इस सभा का नौ चक्कर लगा के मेरे पास फिर आओ। नौ चक्कर लगा के आया, ग्रेन वैसे के वैसे ही है, विषयाशक्ति एकदम नहीं है, जीरो हो गया। हम लोग को विषय देखने से क्या मुंह में पानी आ जाता ना? अगर पानी आ जाता तो वो चीनी का कण क्या होता? गल जाता, एकदम आसक्ति नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो बोले नहीं, हो गया तुम्हारा, अब तुम चिंता नहीं करो। विजितेंद्रिय चूंकि कूटस्थ है, क्योंकि कूटस्थ है। अच्छा, कूटस्थ हुआ कैसे? ज्ञान विज्ञान तृप्त है, उसका मन ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, उसको अनुभव हो चुका है। विज्ञान कब होता है? निधि ध्यासन में विज्ञान होगा, अनुभूति कब आएगी? श्रवण किया, अविद्या गई, मनन किया, संशय गए, उसके बाद में निधि ध्यान में क्या होगा? आप ध्यान में पहुंच गए, अनुभव कर लो, आप अपना ध्यान में स्थित हो गए, रियलाइज हो गए। अब रियलाइज हो गए तो ऐसा आदमी क्या है, कूटस्थ है, अब उसको विषय अट्रैक्ट नहीं करते। अगर विषय अट्रैक्ट नहीं करते हैं तो वो क्या हुआ, विजितेंद्रिय, उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। इंद्रियों को जीत लिया मतलब अब इंद्रियां उसके राग द्वेष के कारण नहीं काम करती है। हमारी इंद्रियां सब हमारे राग द्वेष के हिसाब से काम करती हैं। आप अपनी फैमिली के देखना, जब आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हो तो हर व्यक्ति का राग द्वेष अपने आप प्रकट होता रहता है, किसको क्या पसंद है। इतने आइटम के अंदर देखते देखते पता लग जाएगा, देखो इसको ये पसंद है, उसको वो पसंद है, उसको वो पसंद है, उसको सबका अलग है कि नहीं, सबकी वासना अलग है, राग द्वेष अलग है, सबके लाइक्स डिसलाइक सबके अलग अलग हैं। मगर जो ज्ञानी है अब उसकी इंद्रियां काम करती हैं। ऐसा नहीं होता है ज्ञानी होने के बाद में आपका शरीर खत्म हो गया या आपकी इंद्रियां नहीं रही, आप समाज में व्यवहार नहीं करोगे, ऐसा नहीं होता है। मगर उसकी इंद्रियां काम करती हैं, मगर राग द्वेष रहित करती हैं, और अज्ञानी की इंद्रियां राग द्वेष सहित करती हैं। ज्ञानी की इंद्रियां राग द्वेष रहित करती हैं और अज्ञानी की इंद्रियां राग द्वेष सहित करती हैं, इसलिए वो विचितेंद्रिय है। तो कैसे वहां से शुरू हुआ, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा था तो कूटस्थ हुआ। कूटस्थ का मतलब अब उसको विषय उसको और डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अब विषय डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो फिर जो है विजितेंद्रिय हो गया। विजितेंद्रिय का मतलब क्या हुआ कि उसकी इंद्रिया में अब राग द्वेष नहीं रहा, उसकी इंद्रियां काम करती हैं मगर राग द्वेष लाइक्स डिसलाइक्स उसमें नहीं है। युक्त इति उच्चते योगी समलोष्ट अस्म कांचन, ऐसा व्यक्ति वो जो है योगी हो गया, आप उसको हम अब योगी कहेंगे। युक्त इति उच्चते, वो जुड़ गया, स्थित हो गया, उसको हम योगी कहेंगे। अब समलोष्ट अस्म कांचन, लोष्ट मतलब मिट्टी, मिट्टी का एक खंड, एक ढेला, मिट्टी का एक ढेला हो, अस्म मतलब एक पत्थर स्टोन, और कांचन गोल्ड, उस सबके अंदर सम है। सबके अंदर सम है मतलब ये मत समझना कि उस ज्ञानी को ये नहीं पता है कि इन तीनों चीजों के अंदर में गोल्ड की कीमत सबसे ज्यादा है, ये उसको मालूम है। उसको दो चीजें और मालूम है, एक तो है कि वो जो है मिट्टी और पत्थर और सोना तीनों इनर्ट हैं, नंबर वन। उसको यह भी मालूम है कि ब्रह्मार्पण ब्रह्म अभी ब्रह्माग्नो ब्रह्म ब्रह्म ही बते, सब ब्रह्म रूप है, हर चीज ब्रह्म रूप है। आपको याद है ना, आपको बताया था सुआ मंत्र हवेश चम्मच अग्नि जिसके लिए किया जा रहा है, ईश्वर जो फल मिलेगा, सारा का सारा ब्रह्म ही है। तो सबको ब्रह्म एक रूप देखता है, सोना भी ब्रह्म है, मिट्टी भी ब्रह्म है, और वो पत्थर भी ब्रह्म है, ब्रह्म का रूप है। तो इसका समरी क्या हुआ इस श्लोक का, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा है इसलिए कूटस्थ है, क्योंकि कूटस्थ है इसलिए विजितेंद्रिय है, और इसलिए सम लोष्ट अस्म कांचन, इसको सबको एक दिखता है। जिसने उस परम को पा लिया उसके बाद में फिर मिट्टी का ढेला और सोने का ढेला क्या फर्क पड़ता है उसको, उसके लिए तो सम ऐसा कोई इनर्ट चीजें हैं, यहां सबके सब ब्रह्म रूप हैं। अब अगला श्लोक जो है मनुष्यों के संबंधों में योगारूढ़ की समत्व दृष्टि को दिखाता है। ये तो इनर्ट चीजें थी, अब सेंसियंट बीइंग के बारे में भगवान जी बोलते हैं कि उसके जो रिलेशंस जो हैं उसके साथ में वो कैसा व्यवहार होता है, क्या होता है उसका। अगला श्लोक,
सुहिन मित्रारुदासीन,
मित्रारुदासीन
मध्यस्थ द्वेष बंधुषु,
मध्यस्थ द्वेष बंधुषु
साधुष्वपि च पापेषु,
समबुद्धिर्विशिष्यते
सुहिन् मित्रानुदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते।
देखो नाइन किस्म के, नौ किस्म के यहाँ पर जो है रिलेशंस बताए गए हैं, नौ किस्म के। कौन है भाई? एक तो सुहृद है। सुहृद किसको कहते हैं? तो प्रत्युपकार न चाहकर उपकार करने वाला, मैं आपकी सहायता करूंगा, रिटर्न में आप कुछ मत देना, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी सहायता करूंगा बस। प्रत्युपकार न चाहकर उपकार करने वाला ऐसा कौन है भाई? ऐसा भगवान है। भगवान सुहृद है, भगवान सबको प्यार करते हैं, सहायता करते हैं, चाहे हम उन्हें जाने या ना जाने। बहुत लोग नहीं भगवान को जानते हैं तो भगवान का सहायता नहीं करते हैं, सबकी करते हैं। सुहृद मित्र स्नेह न उपकारी प्रेमी, पुराने संबंधों के कारण प्रेम है मित्र। अरि, अरि मतलब शत्रु, बिना कारण के अपकारक, कोई कारण नहीं है मगर ही क्रिएट ट्रबल। समाज में ऐसे लोग भी होते, कुछ नहीं है ट्रबल क्रिएट कर रहा है, आपने कुछ नहीं किया ट्रबल क्रिएट करते हैं। उदासीन, उदासीन मतलब पक्षपात रहित, उत आसीन जो ऊपर बैठा है, उदासीन इनडिफरेंट जिसको कहेंगे, इनडिफरेंट। दो पक्ष के विवाद में इनडिफरेंट टू बोथ, किसी का पक्ष नहीं लेता है, उदासीन है, इनडिफरेंट है। मध्यस्थ जो परस्पर विरोध करने वाले दोनों का हितैषी है, मध्यस्थ बीच में खड़ा होके मध्यस्थता करता है, दो विरोधी आदमी हैं अब वो मध्यस्थ बना, जिसको हम आर्बिट्रेटर कहते हैं, आर्बिट्रेटर कहते हैं, मगर वो दोनों का हित चाहता है, दोनों का हित चाहता है। द्वेष, द्वेष है अपकारणी अपि अपकर्ता जो है, अपना अप्रिय, अपना अप्रिय। अच्छा, सहायता करो फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप उसको जो आदमी द्वेष करता है ना, उसकी सहायता करो, वो उल्टे में फिर आपसे द्वेष ही करेगा। द्वेष। बंधु, बंधु शरीर के साथ संबंधी जो है, ब्लड रिलेटिव्स बंधु। साधु, साधु मतलब धर्मशील, धर्मशील का मतलब जो शास्त्र के अनुसार काम करता है वो है साधु, साधु। पापी अधर्मशील, जो निषिद्ध कर्म करता है, जो कर्म नहीं करने चाहिए, जो आधार्मिक कर्म है उनको जो करता है उसको पापी कहते हैं। समबुद्धि विशेषत है, इन सब व्यक्तियों को योगारूढ़ सम और समबुद्धि मतलब राग द्वेष रहित है। हाँ ठीक है, ये आदमी है, इनका नेचर ऐसा है, ठीक है करने दो, समबुद्धि। देखो जिस व्यक्ति का जो नेचर है वो वैसे ही काम करेगा। बाघ या सिंह हिंसक हैं, वो हिंसा का ही काम करेंगे, नेचर है उनका ऐसा, भगवान ऐसा नेचर बनाया है। वैसे ही समाज के अंदर डिफरेंट टाइप के व्यक्ति हैं, उनका नेचर इस किस्म का है, कोई हेल्प करना चाहता है, कोई हेल्प करेगा तो वो द्वेष भी करता है, कोई हेल्प करता है तो प्रत्युत्तर में कुछ चाहता है, कुछ दे हमको। मगर ज्ञानी इन सब के अंदर में सबके साथ में समबुद्धि है, उस किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है। आगे हमने पांचवें अध्याय में देखा था, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित कौन सा पंडित? पुजारी वाला पंडित, गीता में पंडित का मतलब क्या होता है? आत्मज्ञानी। जहां जहां पंडित वर्ड आया है वहां पंडित वर्ड का भगवान ने दूसरे अध्याय में ही उसको बता दिया, आत्मज्ञानी को पंडित कहते हैं। तो पंडित क्या करता है? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके। देखो मनुष्य के अंदर में ब्राह्मण और स्वपाके चंडाल को लिया, एक ब्राह्मण है सात्विक है एक चंडाल है, और एनिमल में से पशुओं में से तीन को लिया है, गवि हस्तिनी सुनी मतलब कुत्ता, तो एक सात्विक है एक राजसिक है एक तामसिक लिया है। एग्जाम्पल देखो कितना डीप जाना पड़ता है, कौन क्यों भगवान ने तीन पशुओं का नाम लिया, एक सात्विक है एक राजसिक है और एक तामसिक है। तो इन सब के अंदर में समदर्शिना भगवान कहते हैं कि पंडित जो है वो समदर्शी, समवर्ती नहीं कहा। समवर्ती का मतलब क्या? एक जैसे हो। अब आप बोलो अब शेर को आ जाओ, आओ बाघ मामा आई वांट टू हग यू, समवर्ती हो गया ना, समवर्ती बना किया समदर्शी। ये देखो कि बाघ के अंदर भी वो आत्म तत्व है, भगवान है, मगर उससे जो डिस्टेंस मेंटेन करना है वो करना होगा। इधर आप बाघ को जू में देखो जहां पर वो पिंजरे में बंद होता है, और जंगल में अगर आपको जाके देखना है तो आपको पिंजरे में बंद होना होगा। दो तरीके से आप देख सकते हो, या तो वो फ्री है आप पिंजरे में हो। इन सब में कौन क्या कर रहा है ऐसे विचार में जिसकी बुद्धि नहीं लगती। देखो हम लोग जो है ना बहुत समय जो है उन लोगों के पर्सनैलिटी को उसके करेक्टर को लेके चिंतन करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। ज्ञानी उसका मन उधर जाता ही नहीं है, विचार ही नहीं करता। अर्थात ऐसा योगी सब योगारूढ़ पुरुषों में उत्तम है। देखो ज्ञानी की आत्मा में स्थित है, और अज्ञानी सारा जीवन जोड़ तोड़ में लगा रहता है। जोड़ तोड़, ये चाहिए अब इसको निकालो, तोड़ो इसको हटाओ। आप अपना पिछला जीवन देखो जोड़ तोड़ वाला है। एक समय में हमको ये चाहिए था है? ये चेयर अच्छा था, अब आप सोचते हो कि ये चेयर निकालो आउटडेटेड हो गया, तोड़ो इसको भगाओ, अब नया चेयर लेके आओ। जोड़ तोड़ के अंदर अज्ञानी लगा रहता है। मगर ज्ञानी कैसा होता है? कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। देखो सम बुद्धि है कबीर, कबीरा खड़ा बाजार में। अब कबीर तो ज्ञानी है ना, अब ज्ञानी वो बाहर नहीं कहीं बैठा, बाजार में बैठा हुआ है, बाजार के अंदर खड़ा है, वहां हर किस्म के लोग हैं, मगर बैठ के क्या कर रहा है? सबकी मांगे खैर, उसको देखो किसी से दुश्मनी नहीं है, सबकी खैर मांग रहा है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, देखो सम समता का उदाहरण है। अच्छा तो नेक्स्ट टॉपिक अब जो है ध्यान योग है। तो हमको क्या करना है? ध्यान योग के फिट होने के लिए, ध्यान योग की योग्यता पाने के लिए सबसे पहले हमको साकाम कर्म करने हैं, हमको कर्मयोग करना है, कर्मयोग करके मन शुद्ध करना है, और उसके बाद में जब योगारूढ़ हो जाएंगे तो फिर कर्मयोग को छोड़ भी देना है। तो आपको ये जानना होगा कि कब हमको करना है और कब छोड़ना है। जब योगारूढ़ हो जाएंगे तब आपको कर्मयोग करना छोड़ देना होगा। कब योगारूढ़ हो जाएंगे? भगवान ने चार आसक्तियों का बात कह दी आगे, ये जब आसक्ति चली जाए तब जानना आप योगारूढ़ हो गए हैं। अच्छा अब दसवें अध्याय से जो है हमारा मेडिटेशन का टॉपिक, ध्यान का टॉपिक चलेगा 10 से लेके 28वें श्लोक तक। भगवान निर्विकल्प समाधि तक हमको लेके जाएंगे, और जितनी सुंदरता के साथ में यहाँ पर बताया गया है ध्यान के बारे में, इतना डिटेल और कहीं नहीं मिलेगा। भगवान एक एक चीज को, छोटी छोटी चीजों को देख के बताएंगे।
योगी युञ्जीत सततम्
योगी युञ्जीत सततम्
आत्मानं रहसि स्थितः
एकाकीयत चित्तात्मा
निराशीरपरिग्रहः
योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः
एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः।
अच्छा, यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि योगाभ्यास करने वाले के लिए योगी युञ्जीत सतत आत्मा है। योगी युञ्जीत सततम, सततम मतलब सर्वदा, आत्मानम मन यहां पर भी अंतःकरण मतलब मन, रहसि स्थित एकाकी यक चित्तात्मा निराशी अप्रिय। तो योगी युञ्जीत मतलब ध्यान करने वाला योगी, ध्यान करने वाला जो योगी है, ऐसे योगी के विशेषण क्या हैं, उसकी मन की स्थिति क्या है, ये सब बता रहे। रहसी स्थित मतलब एकांते गिरी गुहादौ। देखो ये रहसी स्थिति जो है, स्थित मतलब जो है स्थान के बारे में बता रहा है। एक एक वर्ड जो है एक एक चीज को इंगित करेगा। तो पहला वर्ड है रहसी स्थित मतलब सर्वकर्म संन्यासी, सब कुछ छोड़ दिया। सर्वकर्म संन्यासी का मतलब क्या हुआ, इसने अपना कर्मयोग करके मन शुद्ध कर लिया, करने के बाद में उसने श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए प्रस्तुत है। अब निधिध्यासन करने के लिए वो बैठेगा, बैठने के लिए उसको क्या चाहिए, एकांत में जाना है। ये किसको जाना है, सर्वकर्म संन्यासी जो गिरी गुहा में जाके बैठेगा। गिरी गुहा मतलब पर्वतों की गुफाओं में जाके जो बैठेगा, एक तो वो है। हम क्या करेंगे, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो अकेले नहीं हैं, हमारे लिए क्या है। तो हमारे लिए ये है कि आप घर के एकांत कमरे में जाके बैठेंगे, आपके पास में इतने कमरे हैं तो जो कमरा एकांत होगा उसमें आपको समय का भी जो है आपको चयन करना होगा। समय का चयन मतलब किस समय बच्चे उठ जाएंगे उसके पहले हमको बैठना है ध्यान के लिए, मम्मी मम्मी डैडी डैडी शुरू हो जाएगा फिर ध्यान कहाँ, खत्म हो गया। तो आपको स्थान और समय का चयन गृहस्थी लोगों के लिए है, और जो सर्वकर्म संन्यासी है जो गिरी गुफा में बैठा हुआ है उसके लिए कोई समय की बात नहीं है, उसको एकांत चाहिए। उसके बाद में कैसी जगह में बैठे, एकाकी, एकाकी मतलब जन रहित मतलब अब जैसे गिरी गुफा के अंदर में, पहाड़ की गुफा के अंदर वहां पर कोई आदमी नहीं है। और गृहस्थी के लिए हम इतने सवेरे उठें कि हमारे बच्चे सोए रहें, एकांत, एकाकी, जन रहित, कोई नहीं है। और यहां तो और अच्छी बात है, यहां तो आपके पास में घर में अगर लोग भी होते हैं जन रहित, चारों तरफ जन रहित, कोई बाहर निकलता ही नहीं है, ये जन रहित तो ऐसे हो जाता है जन रहित। सो अकेले ध्यान में बैठे हैं, दूसरा व्यक्ति ना हो। देखो तो एक जगह सुभाषित में कहा गया है, एको भिक्षु यथोक्तस्य, एक अगर आदमी होगा तो वो उसको हम भिक्षु कहेंगे, ये तो तस्य है। भोग चे मिथुन भवेत, अगर दो हैं, दो आदमी बैठे हो, अगर बाई चांस स्त्री पुरुष हो, आपके साथ में कोई संबंध नहीं है, मगर दोनों आदमी जो है एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, ध्यान में बैठे हैं, आपको मालूम है कि इस कमरे के अंदर एक और व्यक्ति है और वो अपोजिट जेंडर का है, बस हो गया काम, ध्यान नहीं होगा। त्रयो ग्राम में समाख्यात है, बोले तीन अगर आदमी होंगे तो बोलते वो ग्राम हो गया, विलेज हो गया, पॉलिटिक्स की बात करना शुरू कर देंगे। अच्छा तीन से ज्यादा होंगे तो क्या कहेगा, ऊर्ध्वम तू नगर आए थे, नगर हो गया, सिटी हो गया। इसलिए भगवान ने कहा एकाकी, अकेले बैठना है। अच्छा फिर यत चित्त आत्मा, चित्त मतलब माइंड, आत्मा माने शरीर, देखो यहां आत्मा माने शरीर हो गया, चित्त आत्मा है ना वर्ड यहां पर, यत चित्त आत्मा, चित्त मतलब हो गया मन, आत्मा माने शरीर, मन और शरीर दोनों ही संयमित हो, कंट्रोल्ड हो। अच्छा योग में प्रतिबंध करने वाला कोई व्यापार ना हो, योग हम करने बैठे हैं ध्यान योग में, उस टाइम में कोई प्रतिबंध का व्यापार ना हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आए। ऑब्स्ट्रक्शन कहां से आ सकता है, एक तो हम लोग हो गया मोबाइल हो जाता है ना, उठ के पहले मोबाइल ग्रैब करते थे, ध्यान में बैठेंगे मोबाइल साथ है, सत्संग में आते हैं मोबाइल साथ है, टी 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 करने, हो गया आपका ध्यान खत्म, शुरू हो जाता है। अच्छा कैसे यथ चित्त आत्मा बने, यथ चित्त आत्मा हम कैसे बने, भगवान कहते हैं निराशी, निराशी मतलब विगत तृष्णा, कामना न हो, आप अपने चित्त को अपने मन को और शरीर को कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो आपको निराशी होना होगा, तृष्णा नहीं आनी चाहिए। आप सवेरे बैठे हैं, अब वो बोलते हैं कॉफी 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 कॉफी, ब्रू कॉफी चाहिए, इतनी वैरायटीज है कॉफीज की, कौन सी कॉफी चाहिए, वो कॉफी नहीं होना, आप उठ गए चलो भाई कॉफी पीने चलते हैं, है? निराशी, अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह परिग्रह रहित, सन्यासी जो है अपरिग्रही होता है, उस सन्यासी की चीजें बहुत कम होती हैं, हम लोग का कितना परिग्रह होता है, बहुत सा परिग्रह समान होता है, ये ऐसा चाहिए वैसा चाहिए ये चाहिए परा लेते हैं हम लोग। तो निराशी मतलब होता है उसके मन की स्थिति बताते हैं, बिना किसी मन के अंदर कोई आशा नहीं है, ये मन की स्थिति है। यत चित्तात्मा ये बताता है कि कोई प्रतिबंध नहीं है। एकाकी बताता है जन रहित स्थान, रहसी स्थिति बताता है कि जो है स्थान कैसा होना चाहिए। देखो एक एक वर्ड एक एक चीज इंडिकेट कर रहा है इस श्लोक के अंदर में। अच्छा तो योगी को क्या करना चाहिए, सततम आत्मानं भगवान को में लगाए रखना चाहिए, ये योगी को करना चाहिए। समय समाप्त हो गया। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।